السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. जब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होता है तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है, बहुत जज्बा होता है। हम बड़े शौक़ से भाग भाग के क़ियामुल लैल भी करते हैं, मसाजिद का भी रुख करते हैं और बहुत सारे नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाता है, तो तकरीबन मैंने 8-9 दिन गुजर जाते हैं तो वो जोश थोड़ा हल्का पड़ने लगता है। मस्जिदों में भी तादाद लोगों की कम हो जाती है और उस तरह से हम जोश और जज्बा नहीं दिखाते। तो इसके अंदर ये बात समझनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। क्योंकि हम पूरा साल इस रूटीन में नहीं रहते, तो जब रमज़ान में हम ये एक डिफरेंट रूटीन शुरू करते हैं जो नेकियों में अपनी ताकत कोशिश लगाने की है, तो हमें मुश्किल आती है। और ये नेचुरल बात है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आपको मुश्किल आ रही है तो वो कोई आपका ईमान कम है या कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बात है कि चूंकि हम आदी नहीं होते तो हमारे लिए सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल सहरी के लिए, फिर उसके बाद देर तक जागना भी मुश्किल कि हम कयामुल लैल करें। इसी तरह और जो भी नेकी के काम हैं उनके अंदर थोड़ी स्पीड दिखाना, कुराने करीम की तिलावत करना, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ना, इसमें थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसके अंदर बहुत परेशानी की बात नहीं। असल बात यह है कि ऐसे वक्त में हमें अपने आप को खींच के लाना पड़ेगा। यानी हमारा जब दिल नहीं चाह रहा तब भी हम नेकी के लिए उठ खड़े हों, यही तो बड़ी बात है। अगर आपका दिल चाह रहा है और जोश भी है और हिम्मत भी है और फिर आप करते हैं तो ठीक है, मगर वो आसान है। जिस वक्त आपका अंदर से भी हिम्मत उस तरह से जवाब दे रही है, उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए, और जोश भी ठंडा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को पुश किया है, लेकर गए हैं मस्जिद, लेकर गए हैं या फिर कुरान करीम को खोला जबकि आपके पास और भी कई काम थे, अब आप इस वक्त दिल नहीं भी चाह रहा फिर भी आप कर रहे हैं, तो आपका तो अजर और ज्यादा है। कभी भी ये ना सोचें कि अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा या मुझे उतनी लज्जत महसूस नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर अब क्या फ़ायदा करने का। फ़ायदा फिर भी होगा, तब भी आपने अपने आप को खींच के लाना है। क्योंकि याद रखिए, कभी भी शुरू के अंदर ऐसा नहीं होता कि इंसान को बहुत मज़ा आने लगे। इट टेक्स टाइम, आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान के अंदर ये चीज़ें जज़ब होने लगती हैं और फिर आपको उन्हीं इबादात में मज़ा आने लगता है। मसलन है कोई उम्रा है या हज है या रोज़े हैं या तहज्जुद है, ये सब थोड़े मुश्किल काम है, नफ्स के ऊपर थोड़े भारी काम है। और एक ताबेई का मैं आपको बता देती हूँ कि वो फरमाते थे, 10 साल मुझे लगे तहज्जुद में स्ट्रगल करने के लिए। यानी 10 साल तक वो अपने आप को खींच के लाते रहे, तहज्जुद के अंदर नहीं भी दिल लगता था तो तब भी वो अपने आप को खड़ा करते थे। उसके बाद कहते हैं कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, उसका शौक आ गया। फिर आप देखते हैं कि जब ये इबादात का आपको फिर एक सुरूर आने लगता है तो फिर वो और आसान हो जाती हैं। लेकिन शुरू में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए बहुत ही आसानी और आप चलते ही जा रहे हैं और आपको बड़ा मजा आ रहा है। कुछ दिन तो आप जोश में आएंगे, उसके बाद फिर वो जोश ठंडा होगा तो फिर आप कहेंगे कि ये काम भी है और वो काम भी है और चलो छोड़ो अब, और ये कौन सा फर्ज है, और बहुत सारी ताबीलें, बहुत सारी एक एक्सक्यूजेस आपको आपके नफसी ने देनी है और आपने उस वक्त ओवरकम करके और फिर आपने वो काम करना है। और इसी के अंदर आपकी बहादुरी है कि आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें इस महीने में और अपने नफ्स को इसके ऊपर लेकर आएं कि नहीं भी दिल चाह रहा तब भी मैंने करना है। देखिए, हमने मजे के बंदे नहीं बनना कि हम मजा आएगा इबादत में तो तब करेंगे, अब मजा नहीं आ रहा तो फिर छोड़ो। नहीं, मजा आए या ना आए, हमने कुरान भी पढ़ना है, हमने नफल भी पढ़ने हैं, हमने कयाम भी करना है, हमने रोजे भी रखने हैं, हमने सब वो काम करने हैं जो अल्लाह ताला को राजी करने वाले हैं। तो हमने मजे के बंदे नहीं बनना, अल्लाह के बंदे बनना, ख्वाहिश के बंदे नहीं बनना कि जब मेरी ख्वाहिश है, जब मेरा दिल करता है तो तब मैं करूं, जब मेरा दिल नहीं कर रहा तो छोड़ो। अब दिल के बंदे तो नहीं है ना, हम अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए इन चीजों को हमने एक तरफ रख देना है, और हमें दिल ना भी करे तब भी हमने करना है कि एक ना एक दिन जब आप इन चीजों को इंशाल्लाह करते रहेंगे, इन इबादात को, तो आप देखेंगे फिर ये इतनी आसान हो जाती हैं कि रमजान के बाद भी इनको कंटिन्यू करना आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अगर रमजान में ही डामाडोल हो गए और जब दिल किया तो किया, नहीं दिल किया तो नहीं किया, तो फिर रमजान के बाद भी उनको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा अपने आप को बांध के हमने लेकर आना है, और अपने आप को ये कहना है कि मैंने अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है, ना कि मेरा नफ्स मुझे जिधर ले जाएगा मैं उधर चली जाऊं। मैंने अपनी ख्वाहिश को इसके ऊपर लेकर आना है, ना कि मेरी ख्वाहिश जिधर मुझे ले जाना चाहे मैं उधर चली जाऊं। तो जो इंसान अपने आप पे जबर करके, अपने नफ्स को कंट्रोल करके और अपने आप को इन चीज़ों का आदी बनाता है, फिर वो देखिएगा कि फिर उसको इसमें लज्जत भी आने लगती है। मगर शुरू में एक्सपेक्ट ना करें कि शुरू से ही आपको बड़े मज़े आएंगे, और कुछ लोग तो कहते हैं हमें बड़ा मज़ा आता है, मुझे क्यों नहीं आता, और आप गिल्टी फील करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जब उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर उसमें लज्जत आने लगती है, फिर इसको छोड़ना मुश्किल हो जाए। फिर जिस दिन आप तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे आपको बेचैनी होगी, जिस दिन आप कुरान करीम नहीं खोलेंगे आपके दिल में एक थोड़ा बेसकूनी का सा सारा दिन गुजरेगा कि आज मैंने कुरान नहीं पढ़ा। तो आदत बनाने में टाइम लगता है, इसमें अपने आप को लाने में टाइम लगता है। तो इबादत जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं स्टार्ट होती कि आप बस पहले अपने आप से पूछें कि मुझे कैसा फील हो रहा है और फिर उस फीलिंग के मुताबिक आप आगे चलें, वो कभी भी शुरू में नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये कोशिश करिएगा कि जैसे आपने शुरू में बहुत मोहब्बत और शौक़ और जोश के साथ रमज़ान का आगाज़ किया था, इसी तरह आप भी आपने आगे चलते रहना, और सिर्फ वीकेंड का इंतज़ार नहीं करना कि वीकेंड आएगा तो फिर हम थोड़ा तेज़ दौड़ेंगे, फिर उसके बाद अब वीकडेज़ हैं तो फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, हमने चलते रहना है। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए और हमारे लिए नेकियों को करना आसान फरमा दे। आज हम अल्लाह ताला का जो इस्म मुबारक देखेंगे वो सूरतुर रहमान में दो बार आया, एक बार दरमियान में और एक बार आखिर में, और वो है अल्लाह ताला का नाम जुल जलाली वल इकराम। इस नाम को सूरतुर रहमान में लाने से पहले अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक की बात की है कि अल्लाह ताला की तख्लीक को देखो, और हर एक नेमत जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वो दुनिया की नेमत है, और हर नेमत के बाद फरमाया फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ताकि आप सोचें गौर करें कि ये नेमतें मेरे इर्द गिर्द बिखरी नहीं है और मैंने इनका शुक्र अदा करना है। ये मुझे हासिल है और मैंने इनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। तो इन नेमतों को दिखाया गया जो हमारे पास हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी यहाँ है वो फना हो जाने वाला है, इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और फिर फरमाया वयबका वजहु रब्बी का जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ बाकी रहने वाला तेरे रब का चेहरा है, तेरे रब की जात है जो जुल जलाली वल इकराम है। तो यानी आप जब इन नेमतों के अंदर होते हैं और इन नेमतों का मजा उठा रहे होते हैं, तो तब ये सोच लिया करें कि इन्होंने एक दिन खत्म हो जाना है। और इसके बाद फिर जब ये बात फरमा दी और ये अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम आ गया यहाँ पे, तो इसके बाद वाली आयात आप देखेंगे कि आखरत पे मबनी है, आखरत के बारे में बात करती हैं। तो उनमें भी अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया। लेकिन जो दुनिया की नेमतें हैं, जिनसे हम आज लज्जत उठा रहे हैं, जिनमें हम गुम हो जाते हैं, जो बड़ी मीठी लगती हैं, वो बता दिया गया कि वो खत्म हो जानी है। और सबसे आला और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को अल्लाह रब्बे जुल जलाली वल इकराम उसका साथ मिल जाए, उसके पास हो वो। तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि तुम ये ना हो कि यहीं पे गुम हो जाना, इससे आगे एक और जहान है जिसकी नेमतें कितनी बड़ी हैं और इससे कहीं ज्यादा बेहतर और बाकी रह जाने वाली है। तो फिर सारी आखरत की बातें आईं। तो ये नाम मिडिल में आया तो क्या मतलब है जुल जलाली वल इकराम? जुल जलाल, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं जलाल वाला, बड़े जलाल वाला है। तो इसका माना इमाम जुज्जाज ने ये किया है कि जुल जलाल अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इस तरह से आता है कि वो जात जो इस बात के लायक है कि उसकी ताज़ीम की जाए और हर ऐब से पाक जात। जलाल जिसका मस्दर जो है, ये जो जलील का मस्दर है ये जलाल, तो इसका माना थोड़ा आपको समझ आया होगा कि यानी वो जो मैग्निफिशेंट हो, जो माइट वाला हो। जैसे हम किसी मुल्क के सरबरा या बादशाह या किसी मलका के लिए कहते हैं ना हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी, तो बड़ी शान वाला, जिसकी शान बड़ी आला है, बड़ी ताजीम वाला, यानी जिसका ऑनर बहुत ज्यादा है, बहुत आला बुलंद मर्तबे वाला। तो बुलंद मर्तबा उसका है और जिसको चाहे वो बुलंद मर्तबे अता फरमाए। और तो इसमें जलाल भी है। अब देखिए बाज दफा ये लोग जो ईसाई वगैरह हैं, ये कहते हैं हमारा लव तो, हमारा गॉड तो गॉड ऑफ लव है, तो तुम्हारा गॉड जो है वो तो एंग्री गॉड है या अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसी बात नहीं, असल में बात ये अल्लाह ताला अपनी पावर भी दिखाता है कि ये नहीं है कि वो बस मोहब्बत का खुदा है और वो बस मोहब्बत ही मोहब्बत, तो कोई इसको कमजोरी ना समझे, ये ना समझे कि जो है ना बस अब अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो अब उसको तो हमें बख्शना ही पड़ेगा, बस अब तो उसने बख्श देना ही है, क्योंकि जाहिर है वो तो कभी किसी को सजा दे ही नहीं सकता और वो तो कभी किसी को अजाब में डाल ही नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं, ये भी याद रखें कि तो उसके पास जलाल भी है, बड़ी बुजुर्गी भी है, बुलंदी भी है, कुव्वत भी है, ताकत भी है, बुजुर्गी, शान, ये सब माने आ गए इसमें। तो यानी अल्लाह ताला अज्जा वजल ये नाम इंसान को ये बताता है कि वो अल्लाह सुबहाना व ताला की ताजीम करे, उसका रोब उसके दिल में होना चाहिए। वो ठीक है रहमान और रहीम है, लेकिन उसका रोब भी हो, क्योंकि वो बहुत बुलंद है और वो बहुत हाई स्टेटस वाला है और बहुत शान वाला है। तो जो इतना बुलंद और इतनी शान वाला हो, इंसान के दिल में उसका रोब आता है ना। आप देखें कोई बादशाह ही हो तो इंसान की आवाज़ दब जाती है उसके आगे, क्योंकि उसका एक रोब और जलाल होता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला जो रब्बे कायनात है, उसका रोब और दबदबा हमारे दिल में होना चाहिए। तो जब इंसान इस नाम को समझता है तो उसको ये समझ आती कि मेरा मकाम क्या है और अल्लाह ताला का मकाम क्या है। फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है, फिर वो ऐसे बातें नहीं करता कि जैसे वो किसी अपने साथ वाले के लिए बात कर रहा होता है, किसी अपने दोस्त के लिए या अपने साथी के साथ बात कर रहा हो, अपने हम मर्तबा के साथ बात कर रहा हो। उसको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, कि उससे ऊपर कोई नहीं। और फिर जुल जलाली वल इकराम, इकराम करम से है, करम में मोहब्बत भी है, केयर भी है, नरमी भी है, सखावत है। हमने इससे पहले अल्लाह ताला के नाम देखे हैं, जैसे अल-वहाब भी देखा है, देने वाला, अद-दयान भी देने वाला। तो थोड़ा सा फर्क है अल्लाह ताला के इस नाम में और उन नामों में। ये वो नाम है जिसमें देना तो है, सखावत तो है, लेकिन किस तरीके से वो सखी है वो इस नाम में झलकता है। देखें जब कोई भी किसी को कुछ देता है, मसलन इंसान किसी को कुछ देता है, तो उसके साथ जरूर कोई ना कोई गर्ज होती है। मसलन है कि किसी ने किसी को खाना खिलाया, तो अब उसको ये होता है कि ये मुझे कब खाना खिलाएगा। किसी ने किसी को तोहफा दिया, तो अब उसको उम्मीद होती है कि इससे बढ़ के मुझे तोहफा दे। किसी गरीब की मदद कर दिया, तो अब ये होता है कि ये मेरा शुक्रिया करे या मेरी तारीफें करे। और किसी मोहताज की, कोई मोहताजी दूर की, तो अब उसको ये होता है कि ये मेरे आगे झुक झुक के रहे। लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला अल करीम और जुल इकराम है, करम वाला है, इकराम वाला है अल्लाह ताला। जिसको देता है तो उसके अंदर कोई गर्ज नहीं होती। वो जब अता करता है तो वो कुछ मांगता नहीं कि इसके बदले में मुझे ये दो, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। हम जो करते हैं वो हम दूसरे पे करम नहीं करते अक्सर। हम देते वक्त एहसान करके देते हैं, या दिल नहीं चाह रहा होता तब देते हैं, या दुनियादारी के निभाने के लिए देते हैं, या साथ कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन के देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब देता है तो वो इन सब से बालातर होके देता है और उसको कोई परवाह नहीं होती। इसीलिए आप देखें कि वो उसको भी देता है जो काफिर है, वो उसको भी देता है जो मोमिन है, वो उसको भी देता है जो कि उसको कहता है कि कोई खुदा है ही नहीं, ये सब कुछ खुद बन गया, जो एथीस्ट है उसको भी देता है, जो उसके साथ शरीक ठहराता है वो उसको भी देता है, जो उसकी बात नहीं मानता उसको मुसलमान कहता है, लेकिन फिर भी उसकी जुबान से उसी के खिलाफ बातें निकल रही होती, गिले शिकवे निकल रहे होते। तो वो शर्त नहीं लगाता कि मेरी मानोगे तो दूंगा वरना भागो यहां से। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए वक्त निकालोगे तो कुछ पाओगे वरना कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं। वो ये नहीं कहता। कितने ही सारे मुसलमान हैं जो आज नमाजें छोड़ चुके हैं, जो मादर पिदर आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, फिर भी देखते हैं अल्लाह ताला उनको नेमतों से नवाज रहा है, फिर भी उनकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिस्म चलता है, फिर भी वो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं। जो उसको नहीं भी मानता
और बुतों के आगे जाके झुकता है, अल्लाह ताला उसको भी औलाद से नवाजता है, अल्लाह ताला उसको भी रिस्क रोजी देता है, अल्लाह ताला ने उसको भी चलाया हुआ, उसकी भी जरूरतें पूरी कर रहा है। जो काफिर है अल्लाह ताला उसकी भी मुश्किलें दूर करता है, जो उसकी हस्ती का इनकार करता है अल्लाह ताला उसको भी अता करता है। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह ताला किसी के लिए भी दुनिया में ये नहीं शर्त लगाता कि तुम मुझे मानोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि वो जुल जलाली वल इकराम है, तो वो इकराम वाला है, करम वाला है। और ये भी इकराम होना, करम होना, ये भी दर्जात की बुलंदी बताता है, मर्तबे की बुलंदी बताता है। और ये बताता है, जैसे हम कुरान को कहते हैं कुराने करीम, कुरान जो शान वाला है, ऊंचे मर्तबे वाला है, तो हम इंसानों के लिए भी ये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुरान करीम में आया इन अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, कि तुम्हारे में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के नजदीक मर्तबे वाला, अकरमकुम, ज्यादा मर्तबे वाला वो है जो मुत्तकी है, वो ही हाई स्टेटस वाला है। तो इससे पता चला कि लोगों के मर्तबे अल्लाह ताला के नजदीक उनके पैसे से नहीं है, उनके लुक्स पे नहीं है कि वो कितने खूबसूरत नजर आते हैं और उनके पास कितनी डिग्रियां हैं या वो किस बड़े ओहदे पर फाइज हैं। उनका मर्तबा अल्लाह ताला के नजदीक इस पर है कि कौन कितना मुत्तकी है। अल्लाह ताला जुल इकराम है, इकराम वाला है, यानी करम का मालिक है। जू का मतलब मालिक, जैसे जुल जलाल, जलाल वाला है, इसी तरह जुल इकराम है वो। तो उससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बुलंद मर्तबे अता फरमाए, कोई दुनिया वालों की नजर में चाहे बहुत कम क्यों ना हो, मगर अल्लाह ताला की नजरों में अगर उसके अंदर तकवा है तो वो सबसे ऊंचा है, सबसे इज्जत वाला है। तो किसी से मर्तबा मत चाहें, किसी से मकाम ना चाहें, लोगों की नजरों में ना देखें कि हम इनकी नजरों में जज जाएं और हमारे स्टैंडर्ड बुलंद हो इनकी नजर में, ये मुझे कैसा देखते हैं, ये देखें कि अल्लाह ताला मुझे कैसा देखता है। और उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, मेरे अंदर कितना तकवा है यही बता देगा कि अल्लाह ताला के नजदीक मेरा मकाम क्या है, क्योंकि इज्जत उसी की है अल्लाह ताला के नजदीक जिसके अंदर तकवा है। और जिसमें जितना ज्यादा होगा अल्लाह ताला का डर, अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ना और अल्लाह ताला के खुशनुदी हासिल करने के लिए नेकियां करना, यही तकवा है। जो जितना ज्यादा इसमें दौड़ेगा, जिसको जितना ज्यादा ये फिक्र होगी कि मेरा रब मुझे मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे नाराज ना हो जाए इस गुनाह की वजह से, और जिसको जितना शौक होगा कि मैं ये काम भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इससे मेरा रब खुश होगा, उसका तकवा उतना ही ज्यादा है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है और ये फिक्र है कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, तो आप मुत्तकी हैं। और फिर ये भी है कि अल्लाह ताला जुल जलाल है, इसी वजह से अल्लाह ताला लोगों के आमाल को कबूल करता है, क्योंकि वो बड़ी अजमत वाला है, वो बड़ी शान वाला है, और वो हर ऐब से पाक जात है। और ये भी इसका माना किया गया है कि वो जात की जिससे उसकी बादशाहत की वजह से डरा जाए, और उन चीजों यानी उन अल्फाज से उसकी तारीफ की जाए जो उसकी शान के लायक है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अल्लाह ताला को ऐसे ना समझे कि जैसे हम किसी भी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, और बल्कि बाज दफा लोग जुबान से ऐसी बातें निकाल देते हैं गिले शिकवों की कि अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों किया और उसको ये नहीं था और ऐसे करना चाहिए था और इसको फलां को ये चीज क्यों नहीं दी गई और इतना जुल्म हो रहा है वो क्या देख नहीं रहा, और इस तरह की फजूल बातें जुबान पे लाने से पहले सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह सुबहाना ताला बहुत बड़ी बादशाहत का मालिक है, तो जुल जलाल से दिल में इतना रोब होना चाहिए कि वो दिल दबा हो उसके रोब से, उसकी बादशाहत की वजह से दिल में डर हो। ये कोई आम बंदे की बात नहीं हो रही। और इसी तरह वो जात कि जिसके अलावा किसी और के लिए ना बड़ाई है और ना सखावत है, ये भी जुलजलाली वाली कराम में आता है। ये अफाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए मुनासिब है, उससे बढ़ के इज्जत वाली कोई जात नहीं। इसी तरह शेख सादी फरमाते हैं कि जुलजलाल वो जात है जो अजमत वाली है, किबरियाई वाली है, रहमत वाली है, सखावत वाली है, हर आम और खास पर एहसान जताने वाली है, एहसान करने वाली है, और जो उसके प्यारे बंदे हैं उनके ऊपर मेहरबानी करने वाली है, जो इसकी जो अल्लाह ताला की ताजीम करें उनको अपना महबूब बनाने वाली जात है, और ये अल्लाह ताला का नाम इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इन्हीं दो नामों जुल जलाली वल इकराम के जरिए से दुआ करने की तरगीब की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको लाजिम पकड़ो अपनी दुआओं में, इस अल्लाह ताला के नाम को लाजिम पकड़ो, यानी या जुल जलाली वल इकराम ये बार बार कहना चाहिए अपनी हाजतों में, इससे दुआ मांगो और अक्सर कहो, तो इससे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन का अंदाजा होता है कि कितने ज्यादा आपने जोर दिया कि इस नाम की हम तकरार करते रहें। यानी अल्लाह ताला तू तो वो है कि जब हम कहते हैं या जुल जलाली वल इकराम तो ही तू तो बड़ी शान वाला, बहुत अजमत वाला है और बहुत एहसान का मामला करने वाला है, इनामात से नवाजने वाला है, तो अल्लाह ताला को हम वास्ता देते हैं उसकी इस नाम का। फिर आप जब हम नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज से फारिग हो के हम 3 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं? कभी आपने सोचा उसमें भी आप ये नाम अल्लाह ताला का लेते हैं, अल्लाहुम्मंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। तो अगर आप नमाज के बाद ये पढ़ते हैं तो शायद कभी गौर आपने किया हो कि आप ये अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक आप कहते हैं, और ये हजरत सौबान से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब नमाज से फारिग होते थे तो 3 दफा इस्तिग़फ़ार करके और फिर ये कलिमात कहा करते थे। इसी तरह जो आज का जिक्र है उसके अंदर भी यही कलिमात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना या जल जलाली वल इकराम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन के फरमाया तेरी दुआ कबूल कर ली गई, अब सवाल कर। यानी अब आपने कह दिया ना या जल जलाली वल इकराम, इतने अजीम अल्लाह ताला के दो नामों को आपने ले लिया कि या अल्लाह तू जलाल वाला और इकराम वाला है, तू तो उस उन पे भी करम करता है जो तुझे नहीं मानते, जो काफिर है, तू तो नाफरमानों पे भी करम करने वाला है, और तू तो बड़ी बुजुर्गी वाला और अजमत वाला है। जहन में सोच के फिर नामों के जरिए अल्लाह ताला को पुकारें, और जब आपने ये कह दिया या जल जलाली वल इकराम तो उसके बाद आप दुआ करें तो दुआ कबूल होगी। देखिए दुआओं के अंदर भी जब इंसान अपने दिल से दुआ करता है ना तो वो दुआ कबूल होती है, अब अगर इंसान दिल से दुआ नहीं करता तो फिर दुआ ठीक है, आपने मांग तो ली है, लेकिन वो अल्फाज हैं। देखिए, आपको जब किसी से कुछ मांगना होता है ना, तो मांगने का भी एक तरीका होता है। हम मांगते इस तरह से हैं जैसे कि हम कुछ बस कुछ पढ़ रहे हैं, इतनी दफा ये दुआएं, बाज लोग कहते हैं ये वजीफा बता दें, बस इतनी इतनी दफा ये पढ़ लिया, दैट्स इट। जो दिल से निकले वही तो दुआ होती है कि मुझे कुछ चाहिए, ये दिखाना कि मुझे ये चीज की कितनी जरूरत है। और जितनी डेस्परेशन होगी आपकी दुआ में, कि जितने दिल से आप दुआ मांग रहे होंगे, जितनी अपनी मोहताजी दिखाएंगे, उतना ही अच्छा है। वो हम ठीक है पढ़ते तो हैं मसनून दुआएं, वो किताबें हमने रखी हुई हैं उनमें से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका मतलब तो जाने, और मतलब जान के फिर देखें कि यही वाकई मुझे भी चाहिए, क्या मैं ये चाहती हूं, और फिर उसको अपना शौक बनाएं और अपनी तलब बनाएं। फिर आप उन अल्फाज से जरूर मांगे, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अल्फाज से दुआएं की हैं वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अल्फाज हैं, यानी इतनी जामियत है उनके अंदर कि हम खुद अपनी जुबान में मांगे तो शायद उस तरह से ना मांग सके। लेकिन शर्त ये कि दिल से तो मांगे ना, उसको बस ऐसे ही ना समझे कि ये अल्फाज हैं मैंने पढ़ लिए। तो अल्लाह ताला दिल देखता है, अगर दिल में तलब है तो दिल में भी मांगेंगे तो दुआ कबूल हो जाती। तो या जिल जलाली वली कराम जब आपने कहा, तो फिर उसके बाद आप दुआ मांगे, और जो जिक्र है उसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको कहा, हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, उस शख्स ने नमाज के बाद ये अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ, किस वास्ते से, क्या उसने वास्ता दिया, किस चीज का वास्ता दिया। हम वास्ते देते हैं फलां के सदके, फलां के उससे वास्ते से, देखें वो वास्ते किसी शख्स के देने वो दुरुस्त नहीं है। किसी नबी के वास्ते से ना मांगे, किसी औलिया अल्लाह के वास्ते से ना मांगे, बल्कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया है उस तरह से मांगे, कि देखिए उस शख्स ने किस तरह से वास्ता दिया, बी अन्ना लकल हम्दा, कि सारी हम्द तेरे लिए, अल्लाह ताला सारी तारीफ तेरे लिए, मैं इस वास्ते से तुझसे मांगता हूं कि ला इलाहा इल्ला अंता, कोई इलाह नहीं है सिवाय तेरे, मैं इस वास्ते से मांगता हूं कि सारी तारीफ सारी हम्द तेरे लिए, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है। तो अपने अकीदे को वसीला बनाइए कि हम अल्लाह सिर्फ तुझे ही इलाह मानते हैं और किसी को नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है। ला इलाह इल्लल्लाह बड़ा वजनी कलमा है, अल्लाह मैं मानता हूं कि सिवाय तेरे कोई इबादत के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुझसे सवाल करता हूं कि सारी तारीफ तेरी है और तेरे लिए तारीफ है, ये नहीं सिर्फ तेरे लिए सारी तारीफ है सारी हम्द है। और ये अकीदा तभी इंसान का हो सकता है जब वो अल्लाह ताला को उसकी जात और सिफात में अकेला माने और इसके साथ वाकई किसी को शरीक ना ठहराता हो। लेकिन जब इंसान ने अपने और कोई दाता बनाया हुआ है, कोई फलां मुश्किल कुशा अजमेर मेरे ये हैं और गौसे आजम और फलां, जब उनको फरियाद के लिए बनाया हुआ कि वो मेरे फरियाद रस हैं, वो मेरे गौस हैं, या वो मेरे दाता हैं, या वो फलां मुश्किल कुशा है, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा उसका पोल्यूटेड है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि सिर्फ तू है जो इलाह है, फिर उसने तो और भी इलाह बना लिए, क्योंकि उसने ये सोचा कि जब मुश्किलें दूर करता फलां है और हाजतें पूरी करता फलां है और मेरी फरियादें सुनता फलां है, तो फिर उसका अकीदा प्योर नहीं है, शिर्क से पाक नहीं है। तो जब आप ये कलिमात कहते हैं जैसे इन सहाबी ने कहे, तो आप मानते हैं
कि सारी हम्द ए अल्लाह तेरे लिए और तेरे सिवा किसी के लिए नहीं। और हम्द भी बट जाती है जब आप अल्लाह ताला के सिवा किसी और से सवाल करते हैं या किसी और से समझते हैं कि ये भी मेरे कोई काम कर सकता है। तो जहां आपने उसको कुछ समझ लिया तो अब तारीफ भी तो उसकी उतनी ही होगी जितना वो आपको दे रहा है या जितना आप समझ रहे हैं कि वो मेरे लिए काम बनाता है। आप समझते हैं इसने औलाद देनी है, इसने मुझे शिफा देनी है, इसके हाथ से मुझे ये मिलना है, तो फिर तारीफ उनकी उतनी उतनी तो हो गई। फिर सिर्फ अल्लाह ताला की सारी हम्द तो ना हुई, फिर तो हम्द उनके लिए भी कर दी। लिहाजा ये बहुत सोच समझ के बोलें कि वाकई क्या मैं ला इलाह इल्ला अंता ए अल्लाह नहीं कोई इलाह सिवाय तेरे इसको वाकई मानती भी हूँ या मैंने और बहुत सारे शरीक ठहरा रखे किसी को दुआएं कबूल करने का, हाजतें पूरी करने का, किसी को शिफा का, किसी को औलाद देने का, किसी को रिज्क रोजी बढ़ाने का खुदा बनाया हुआ। और इसी तरह किसी के वसीले से मैं मांगती हूँ, फलां के वसीले से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मुझे दे दे। नहीं, ऐसा ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कभी इस तरह से दुआएं मांगी। तो ये देख लें क्या तरीका है दुआ मांगने का, ये भी वसीला दिया जाना ही है कि आप ये वसीला दे रहे हैं कि अल्लाह सारी तारीफ दे रही है और अल्लाह कोई इबादत के लायक ही नहीं सिवाय तेरे, और तू अलमन्नान है। आगे क्या है, ला इलाहा इल्ला अंत अलमन्नान। तू मन मन कहते हैं एहसान को कि अल्लाह तू बहुत ज्यादा एहसान करने वाला, बहुत ज्यादा अता करने वाला। और देखें एहसान किसी का वो होता है कि जब कोई डिजर्व नहीं भी कर रहा होता तो उसके ऊपर एहसान करता है कि मैंने तुझे अता किया, ऐसे ही है ना। तो अलमन्नान अल्लाह ताला का ये नाम। फिर उसके बाद या बदीअ समावाति वल अर्द, ए आसमान और जमीन को पैदा करने वाले। और बदी में आता है कि पहले कोई मिसाल नहीं थी उसकी, पहले कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको देख के उसने बना दिया, कोई नमूना नहीं था, बल्कि बगैर मिसाल के पैदा करने वाला, इब्तदा से पैदा करने वाला, और दूसरे बगैर किसी मटेरियल के पैदा करने वाला। इंसान जब पैदा करता है कोई चीज को वो कहता है मैंने बनाई है, वो बना तो सकता है लेकिन जिसको कहते ना बदी, वो है जो बगैर मटेरियल के। इंसान जब बनाता है तो कोई मटेरियल यूज करता है, जो भी अल्लाह ताला ने पैदा की, कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो मटेरियल यूज करता है, कोई गाड़ी बनाता है तो मटेरियल यूज करता है, कोई कोई भी चीज वो बनाता है तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल उसने इस्तेमाल किया होता है। ऐसा नहीं होता कि बगैर किसी मादे के वो कोई चीज बना के बैठ जाए। अल्लाह ताला ने बगैर मादे के, कोई मादा नहीं था पहले से, उससे अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई। इंसान तो जिसको कहते हैं जोड़ने तोड़ने वाला, कि जोड़ तोड़ करके फिर कोई चीज खड़ी करता है, ये नहीं कि वो मटेरियल को पैदा करता है, वो तो अल्लाह ताला ने पैदा किया होता है, उसी को जोड़ता तोड़ता रहता है, उसी से चीजें खड़ी करता है। जैसे आप देखते हैं बच्चों के वो ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक से एक के ऊपर एक रख के एक बिल्डिंग बना ली, एक गाड़ी बना ली, एक कोई चीज बना ली, तो लेकिन वो ब्लॉक्स पड़े होते हैं तो उनसे चीजें बनाते हैं। इंसान भी मटेरियल होता है तो उससे बना सकता है, खुद मटेरियल पैदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला अलमन्नान है, बहुत मुबालगा इसमें, बहुत ज्यादा अता करने वाला, बहुत ज्यादा एहसान करने वाला। और बदी है आसमान और जमीन का, कोई नमूना नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था उनको पैदा करने वाला। या जल जलाली वल इकराम, यहाँ पे ये नाम आता है, ए जलाल वाले और इकराम वाले, ए आजमत वाले और अता करने वाले, या हय्यू या कय्यूम, ए हय हमेशा जिंदा रहने वाले और हमेशा कायम रहने वाले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की जुबान से ये अल्फाज सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स ने अल्लाह ताला के इस्मे आजम के जरिए दुआ की है। जब इसके जरिए दुआ की जाती है
तो वो दुआ कबूल होती है, वो सवाल अता किया जाता है जो इसके जरिए दुआ करे। तो इन कलिमात को तो आप लिख लें कि आपने हर दुआ से पहले ये कलिमात कहने, फिर दुआ करनी है। और इसमें आपने ऑलरेडी कह दिया, अल्लाह मैं सवाल करता हूं तुझसे इस वास्ते से कि बेशक तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू सारी तारीफ के काबिल है, तू बदीय समावाती वल अर्द है, तू या जल जलाली, ए जल जलाली वल इकराम, ए हई ए कयूम, तो इनमें से ही कोई फिर इसमें आजम है ना। तो इसलिए इसी के जरिए हम मांगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि या जल जलाली वल इकराम बहुत कहा करो, तो हम ये कलिमा बहुत कहा करें, ये अल्लाह ताला का नाम बहुत ज्यादा लिया करें, और इस बाबरकत नाम के जरिए ही हम अल्लाह ताला से सवाल भी किया करें। आज की जो दुआ है वो दुआ है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी सूरह कसस में, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। ये बहुत छोटी सी दुआ है, बहुत आसान है, अगर आप इसको याद कर लें तो बहुत अच्छा है कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे बड़ा जुल्म किया। कब जुल्म होता है? जब इंसान गुनाह करता है। फ़ग़फ़िर ली तो तू मुझे बख्श दे। तो यही एक मोमिन का तरीका है कि वो अपने गुनाहों को बहुत भारी समझता है, हल्का नहीं समझता, वो ऐसे समझता है जैसे वो पहाड़ के नीचे बैठा हुआ, पहाड़ उसके ऊपर ना गिर पड़े। तो इसलिए अपने गुनाहों को ऐसे समझे कि भारी बोझ है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि तुम आजकल ऐसे गुनाह करते हो, वो अपने जमाने में फरमाते हैं, तुम आजकल ऐसे गुनाह करते हो जो तुम्हारे नजदीक बाल से भी ज्यादा बारीक है, यानी तुम उनको कुछ समझते ही नहीं। हालांकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन गुनाहों को हलाक कर देने वाले समझते थे। तो ये अब हजरत अनस तो अपने जमाने में फरमा रहे हैं ये बात, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, तो तब कितने गुनाह होते होंगे, बहुत थोड़े से। लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के साथ इस जमाने को। और आज जो दौरे फितन है, कुर्बे कयामत का वक्त है, इसमें तो हर तरफ ही फितने ही फितने और गुनाह ही गुनाह। और फिर अगर उन गुनाहों को हल्का समझा जाए तो ये तो यानी एक बुराई की और उसके ऊपर दूसरी बुराई है। तो गुनाहों को कभी हल्का ना समझें। जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं वो तो छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें माफ फरमा दे। और इसी किस्म की दुआ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि मुझे कोई ऐसी दुआ बता दे जो मैं नमाज में पढ़ा करूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसी तरह की दुआ सिखाई थी ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फिर ली मग़फिरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। तो वो दुआ भी और ये दुआ भी, आपने जरा लंबी मांगनी हो तो ये कि अल्लाह ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाई थी कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादा, और कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता सिवाय तेरे, बस तू मुझे माफ कर दे और अपनी तरफ से मुझे बख्श दे और मेरे ऊपर रहम फरमा, कि सबसे ज्यादा तू ही माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला। तो इन दुआओं को आप नोट कर लीजिए, और नमाज में सलाम फेरने से पहले आप ये दुआ किया करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर यही दुआ किया करते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलकीन फरमाई थी। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और अकीदे में इखलास अता फरमाए, और हमारे हर अमल को सिर्फ अपनी खातिर खालिस कर लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।